एवरेस्ट फतह करने का मन आपने कब और क्यों बनाया, और आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा?
एक्चुअली 2011 में एक ट्रेन एक्सीडेंट में मेरा पैर कट गया था।
जी
चलती ट्रेन से कुछ बदमाशों ने उठाकर मुझे बाहर फेंक दिया था, और ये उत्तर प्रदेश में एक बरेली डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास में ये हुआ था। तो मैंने फिर हॉस्पिटल में मैं काफी दिन तक एडमिट रही, करीब 4-5 महीने। फिर वॉलीबॉल तो मैं खेल नहीं सकती थी, फिर मैंने हॉस्पिटल के बेड से ही एक न्यूज़पेपर था, और उस न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी, तो उसमें मेरे ही बारे में बहुत सारी चीजें लिखी थी, कंट्रोवर्सी भी थी उसमें कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, टीटी आने पर अरुणिमा ट्रेन से कूद गई, बहुत, और इवेंट की अरुणिमा सुसाइड के लिए गई थी, बहुत सारी चीजें थी। तो फिर मैंने वहीं से डिसाइड किया कि लाइफ का सबसे टफ गेम लेना है, किसी और को प्रूफ नहीं करना, खुद को प्रूफ करना है आज। क्योंकि मैं शायद कितना भी समझाने की कोशिश करती लोगों को, या फिर जो भी कंसर्न पर्सन थे, या फिर जो भी पुलिस, या फिर जो भी लोग थे शायद, या फिर मीडिया, तो शायद मैं बता नहीं, बोल के शायद मैं नहीं बता पाती। फिर मैंने तय किया कि कभी कभी ये होता कि आप काम बोलता है। फिर तय किया, हॉस्पिटल के बेड से लाइफ का सबसे टफ गेम लिया, और फिर उसपे उसका जो चैलेंज था एक्सेप्ट किया और करना शुरू किया फिर एवरेस्ट।
आपने काफी लोगों को हौसला दिया है। रोजमर्रा की
थैंक
जिंदगी में
यू।
आप तो बहुत लोगों को प्रेरणा देती हैं, पर आपको प्रेरणा कौन देता है और आपका रोल मॉडल कौन है?
एक्चुअली स्वामी विवेकानंद जी भी मेरे स्पिरिचुअल गुरु हैं, और मेरी माँ का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी जिंदगी में। और कहते नहीं है कि अगर आपके साथ कुछ बुरा होता तो अच्छे लोग भी जुड़ते हैं, बुरे लोग, नो डाउट बुरे लोग भी जुड़ते हैं, बुरे लोग भी आते हैं, लेकिन अच्छे लोग भी मिलते हैं। मैं आपको बताऊं कि उस दौरान की बात है कि मेरा माँ का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, और स्वामी विवेकानंद जी की कोट से उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, बहुत सारे ऐसे उनके कोटेशंस हैं जो इंसान को, कहा नहीं, सोते हुए इंसान को भी जगा दे। और बाकी युवराज सिंह थे, कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित थे, और फिर बाद में वो हॉस्पिटल से उठे, वो फिर से वो फील्ड में खेल रहे थे, तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो ये सभी थे मेरी जिंदगी को बदलने वाले, और जो मेरे साथ साथ में रहते थे, तो नो डाउट मेरी माता का बहुत बड़ा सहयोग था।
अगर आपको अपने जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण सबक बताना हो अब हमारे लिसनर्स को, तो आप अपने अनुभवों से जो आपने सीखा है वो कौन सा सबक शेयर करना चाहेंगी?
देखिए, अगर बात करें सबक की, तो जिंदगी का हर चैलेंज एक सबक सिखाता है, और हर मोड़ पे, बस वो कहते हैं ना, चैलेंज बदल जाते हैं, उसका रूप बदल जाता है, लेकिन चैलेंजेस आते जरूर हैं, और हर चैलेंज में आप एक सबक सीखते हैं। मैंने एवरेस्ट में, अगर एक्सीडेंट की बात करें, अगर एक्सीडेंट से मैंने सिर्फ ये सीखा है कि जिंदगी आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, आप जैसा चाहे अपनी जिंदगी को आप मोड़ सकते हैं। अगर परिस्थितियों के दास आप बनते हैं, सिचुएशंस के आप दास बनते हैं, तो शायद आप वहीं रह जाए। जैसे परिस्थितियां ने लिख दिया था कि अरुणिमा व्हीलचेयर पे रहो, या फिर बैसाखी, या फिर शायद जिंदगी भर उठ ना पाए बेड से, ये सारी चीजें थी। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, मोड़ते हैं, कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित, क्योंकि जब जब आपके जीवन में परेशानियां आई थी, तो उसी समय आपके जीवन में कुछ अच्छी चीजें भी आई थी, लेकिन आप सिर्फ नेगेटिव चीजों पे ध्यान देते, अच्छी चीजों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो मैंने बस वो थोड़ी अच्छी चीजों पे भी ध्यान दिया कि ठीक है मेरा पैर कटा है, लेकिन उसके बाद क्या, उस पे ध्यान दिया, और उठ के खड़ा होने की सोचा मैंने, फिर मैंने वो चैलेंज लेना शुरू किया है। और जिंदगी का सबक की बात करें कि कभी भी अपनी जिंदगी, कितनी भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियां आपके जो, उससे हार मत मानिए, लड़िए। हो सकता है कुछ समय के लिए आपको परेशानी हो, लेकिन अगर आप पूरी शिद्दत से, पूरी इच्छा शक्ति से लड़ते हैं, तो आप विजय हासिल जरूर करते हैं।
ये आपने एक बहुत ही अच्छा संदेश बताया है हमारी युवा पीढ़ी के लिए। विकलांगों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी आप काफी प्रयास कर रही हैं, और आपने एक संगठन भी शुरू किया है। क्या आप हमें अपनी संस्था के उद्देश्य और गतिविधियों के बारे में कुछ बताएंगी?
हाँ बिल्कुल। एक्चुअली अरुणिमा फाउंडेशन के नाम से ही है, और मैं कोशिश करती हूँ यही कि, क्योंकि मैंने देखा है कि एक नॉर्मल लड़की को 21वीं सदी में जीना इतना मुश्किल है, तो दिव्यांग जन को बहुत ही मुश्किल, एकदम डिसेबिलिटी के साथ बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं बस उनको, वो डिसेबिलिटी अगर है तो उनके अंदर क्या पावर है उस चीज को, और गवर्नमेंट क्या क्या चीजें फैसिलिटी क्या क्या फैसिलिटीज देती है, वो सारी चीजें मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आप कोई बात नहीं, अगर आपका कोई भी अंग आपके साथ काम नहीं कर रहा है तो गवर्नमेंट का सपोर्ट प्लस आपकी इच्छा शक्ति, इन दोनों को मिला करके आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। तो वो मैं कोशिश करती हूँ लोगों को बताने की। तो अभी स्किल इंडिया भारत सरकार की उनका शायद बहुत ही फेवरेट योजनाओं में से एक, जिसमें बच्चों को जो भी स्किल है उसको अच्छे से ट्रेन करना और उनको जॉब प्लेस दिलाना, जरूरत नहीं उसमें बहुत ज्यादा एजुकेट होने, बहुत ज्यादा एजुकेशन होने, नॉर्मली जिस स्किल्स उसको थोड़ी बहुत आती है उस स्किल्स को ही बहुत अच्छा लेवल पे ले जाकर उसको सिखाना और फिर कहीं पे जॉब जॉब उसको प्लेस करा देना। तो ये था हम उसमें हमारी संस्था ये भी काम करती है साथ साथ में, वाटर पे भी काम करती है, ऑरो प्लांट कराना और महिला सशक्तिकरण पे भी काम करती है और हेपेटाइटिस बी स्वास्थ्य पे भी काम करती है। कि अभी हमारा ही छोटा सा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है होम टाउन अम्बेडनगर से ज्यादा से ज्यादा 20 किलोमीटर की दूरी पे एक तहसील है जलालपुर, वहां पे अगर आप देखेंगे तो हर एक घर छोड़कर एक घर में हेपेटाइटिस बी है, मतलब बहुत बुरी तरीके से। तो जब मुझे पता चला है तो मैंने कोशिश की है वैक्सीनेशन कराने की, जिनको हो गया है उनको इलाज देना और जिसको नहीं हुआ उसको वैक्सीनेशन करा के सेफ करना, तो इसमें भी काम करती है। और साथ साथ में स्पोर्ट्स में जो मेरा सबसे फेवरेट है कि स्पोर्ट्स में कि उन बच्चों को अपना कैरियर बनाना, कहा नहीं है पहले कभी हुआ करता था कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन अब शायद वो सिमिलर हो गया है दोनों, अगर पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब तो खेलोगे कूदोगे तो भी नवाब ही बनेंगे आप। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आप अगर चाहे आपकी फैमिली ने आपका बहिष्कार कर दिया, इग्नोर कर रही है, क्योंकि बहुत सारे दिव्यांगजन ऐसे आते हैं डिसेबल पर्सन कि जिनकी खुद की फैमिली उनको इग्नोर करना शुरू कर दी, तो मैं उनको बताती हूँ कि आप जो सरकार का पैरा के थ्रू जो आप अपना क्वालिटी है उसको निखार सकते हैं किसी भी एक क्षेत्र में, बेस्ट करने की कोशिश करिए। जैसे अगर बैडमिंटन का प्लेयर है तो उसको व्हील चेयर और रैकेट सारी चीजें अवेलेबल कर, अगर एथलेटिक्स का है तो एथलेटिक्स के जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो दिलाना, और कोशिश करते हैं पहले तो मैं स्टार्टिंग में हम लोग खुद आप अपने ही लेवल पे उनको सिखाने की कोशिश, बाद में धीरे धीरे अच्छे कोचेस की तो वो लेवल पे भी, इवन शूटिंग का है अभी मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ कि ये शूटिंग का लेकिन कहा नहीं कोरोना की वजह से फंडिंग का काफी प्रॉब्लम्स हो गई है तो इसलिए नहीं, तो मैं शूटिंग का भी बच्चे जैसे जो बच्चे बहुत ज्यादा नहीं चल सकते तो वो बैठ के अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं शूटिंग में। देखिए एक अल्टीमेटिव मेरा गोल है चाहे मेरा या मेरी ट्रस्ट का, अपनी जैसी और अरुणिमा देश को देना, वही इच्छा शक्ति वही जुनून वही आग अपने गोल के प्रति होना चाहिए, वो मैं और देश की और लड़कियों में देखना चाहती हूँ। इसलिए मैं उनको मोटिवेट करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि वो अपने गोल के प्रति उतना ही जुनून रखे जितना कि शायद ऊपर वाले ने मुझे दिया था।
3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र काफी प्रयास कर रहा है इस दिशा में नए नए कदम उठाने का। आप हमारे श्रोताओं को क्या सुझाव देना चाहेंगी ताकि विकलांगों के हालात बदले?
देखिए सबसे पहली बात कि हम उनको क्यों माने कि वो दिव्यांग है, उनको आप अपने बराबर देखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उनको अपने बराबर समझिए और उनके ऊपर दया दिखाने की जरूरत नहीं, बस उनको एक सपोर्ट करने की जरूरत है।